بھی اللہ نے ایسے بندے دی کہ ان کی زیارت ایمان لانے کا ذریعہ, اور اگر مومن ہے تو اس کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنا. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ مسلمانوں کی ہر تکلیف اور ہر دکھ درد کا علاج ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خود حضرت امیر سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی الجھن اور پریشانی درپیش ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو کر کے نماز کے لیے کرے. نبی کا یہ طریقہ ہمارے لیے حضور سے دعا کر کے تھے تو پریشانی دور ہوئی, لیکن حضور کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر الجھن ہر واقعی تکلیف کو دور کرنے کے لیے نماز کا سہارا لیا. ہم سب کو دعوت ہوئی اور یہ بتایا جا رہا تھا اے لوگوں نماز میں بڑی طاقت ہے, جو پیٹر بینک میں نہیں بندوق کی گولیوں میں پسٹول میزائل کے اندر نہیں, وہ طاقت نماز سے ہے. ہم اس کو ایک رسم سمجھ کر کے نظر انداز کرتے ہیں. میری یہ تلقین ہے کہ نمازوں کی پابندی کر کے دیکھو ان شاء اللہ گھر کی ہندوست بھی ختم ہو جائے گی, کاروبار میں برکت بھی ہوگی. آپ کاروبار کے لیے نماز مت پڑھیں, اللہ کے لیے نماز پڑھیں, اللہ تعالیٰ کاروبار میں بھی برکت دے گی.
بے شک بے شک.
نیت الگ ایک چیز ہے اور برکت آنا الگ چیز ہے. ایک بزرگ تھے, ان کا ایک ایماندار مرغی تھا جس نے بہت اچھا باندھا بنایا, اور جب تعمیر مکمل ہو گئی تو مرید نے اپنے شہر کے قریب کو دعوت دی تو حضور میرے بننے کا انویشن ضروری تھی, افتتاح کر دیجیے, آپ تشریف لے کریں, دعائیں طے کریں, پھر ہم لوگ اس میں شروع کریں گے. جو گئے ان کے لیے مسئلہ بچھائی گئی تھی, پیچھے ایک ونڈو اور باری تھی. آپ وہاں بیٹھے, جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے ایک مسجد سے نظر آئی. انہوں نے مولوی سے پوچھا, بیٹا یہ تم نے باری جو لگائی ہے کس لیے لگائی, تمہاری نیت کیا ہے؟ تو اس نے ایک کامن جواب دیا, میں نے باری اس لیے لگائی ہے ہوا آئے, اجالا آئے, اور گھر میں حفظ نہ ہو, اس نیت سے میں نے یہ باری لگائی. تو وہ بزرگ یہ سن کر سر و تنام لوں گی اس لیے بن گئی. مودی بہت پریشان ہوں کہ حضرت کو میری بات سے کیا کرنی ہوگی. آج جوڑ پر حضرت کے ساتھ سر نیاز جھکا और अपने एक मुश्किल से अर्थ करने लगा मेरी इस बात से आपको तकलीफ दीजिए कि आप इतना रो रहे हैं मुझे माफ कर दीजिए। हजरत ने कहा देगा तेरी बात सुनकर मैं इसलिए रो रहा हूं कि तूने ये खिड़की जो लगाई है हवा मिजाज के लिए लगाई है, इसमें हवा मिजाज तो आएगी सवाब नहीं मिलेगी। पीछे मस्जिद थी मैं खिड़की लगाता और ये नियत कर लेता जब वहां इमाम तैयार करेगा तो मेरे घर में आवाज अजान होगी और अजान की आवाज में सुनूंगा, कोई बयान होगा तो इस खुली हुई खिड़की से बयान भी मेरे घर से सुनूंगा। बेटा अगर ये नियत करके तुझे खिड़की लगाता तो जब तक ये खिड़की रहती उसको हर रोज सवाब मिलता है, रहा हवा और गुजरना इसको तो आना है नियत कर मन कर तो रोजाना हवा आएगी उजाला आएगा लेकिन सवाब नहीं मिलेगा। तू मेरा मुरीद है, तुझे मुरीद होना नहीं आया है अभी, दुनिया कमा लिया मुरीद होकर तूने आखिरत का जहन नहीं पाया। एक ही काम है, अगर नीयत सही होती है तो वो सवाब का काम होता है और नीयत अगर सही नहीं है तो उससे सवाब नहीं मिलेगा दुनिया की चीज़ में। ये है अच्छी नीयत का समरा और धन। इसीलिए बुखार की शरीर की पहली हदीस है हर अमल का दारो मदार नीयत पर है। अखलास और नीयत से जो काम किया जाता है छोटे काम में भी रब्बुल्लाह की बरकत अता फरमाता है, बड़े काम में तो कई जगह है लेकिन गलत नीयत से उस बड़े काम की बरकत भी खत्म हो जाती है। अगर हमने नीयत से हम नमाज पढ़ेंगे ताकि हमारे कारोबार में बरकत हो, ये नीयत सही नहीं है। हम इसलिए नमाज पढ़े कि लोग हमको अच्छा नीयत परहेजगार करें, ये नीयत सही नहीं है। नमाज पढ़ने की नीयत सिर्फ एक है कि रब राजी हो जाए। अगर ये नियत है तो लोग तुम्हें अच्छा भी समझेंगे, घर में बरकत भी होगी, नुकसान भी निकलेगी। नियत सही हो तो हर अमल मोमिन का बड़ा आरामत और लाभदायक है और नियत खत्म हो गई तो उसकी बरकत होगी। दोस्तों हालात को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, हालात कंट्रोल कब होंगे अच्छी नीयत से हम अल्लाह की तरह इसमें कोई ताकत नहीं। सहाबे इकराम ने इस अच्छी नीयत से बड़ी बड़ी जंग उन्होंने जीती। हदीस पाक में है सहाबे इकराम जंग कर रहे थे, एक हफ्ते से किले का उन्होंने मुहासरा किया फेर कर देता और उस पर कब्जा करना चाहते थे लेकिन कब्जा नहीं हो रहा था। एक दिन किले के बाहर को खंडर खोदी जाती है, उसमें पानी था। इस्लामी फौज उसने वजू कर रही थी और वजू में विश्वास कर रही थी। यहूदियों ने देखा फसीह पर चढ़कर कि ये मुसलमान अपने दांतों को साफ कर रहे हैं, पुलिस कर रहे हैं, क्या ये दामों से हमें सजाने हैं? तुमने तस्वीर पर चढ़कर दूर से आवाज दी, ये तुम क्या कर रहे हो? तो कहा, हम अपने नबी की सुन्नत कर रहे हैं, मुंह साफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इस एक लकड़ी से क्या हो सकता? तो उन्होंने जवाब दिया, ये एक लकड़ी जो सुन्नत की अदायगी के लिए ये तलवार से ज्यादा काम है। फिर उन्होंने दिल में एक इरादा किया और कहा, देख अल्लाह हमारी मदद कैसे करता। उन्होंने विश्वास लेकर किले की मजबूत दीवार पर अपना इशारा किया, अपनी बात सात दिन का महासरा था, किला पता नहीं होगा। और एक विश्वास जो अल्लाह और रसूल को खुश करने के लिए की जा रही थी, उसका एक इशारा था, दिल की गहराइयों से उन्होंने किया। तो दीवार किले की दो चार नीचे की नहीं होती थी, जितनी देर मस्जिद का हाल है, इतनी मोटी मोटी दीवारें होती थी जो पत्थर से बनाई जाती है। एक लकड़ी का इशारा किया, दीवार फट गई, नारे पर भीड़ लगाया और दौड़ी और किले में जाती है। जिस आले से, जिस लकड़ी से अल्लाह की और रसूल की रजा के लिए अमल किया जाता है, जब दिल की गहराइयों से खुदा पर एतमाद कर इशारा करते हैं, तो किले की दीवार फट जाती है। ये दोस्तों, ये विश्वास की लकड़ी नहीं है नमाज, ये अल्लाह की फर्ज की हुई इबादत। अगर सही नीयत से, खुलूस से हम नमाज पढ़ेंगे, तो तुम हजारों नारे लगाओ, तंजीमें बनाओ, मेरा दावा है कि सब मुसलमान खुलूस से नमाज पढ़ने लगेंगे, किसी तंजीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तुम्हारे सजदों की बरकत होगी, एक बड़े बड़ों के सर तुम्हारे कदमों पर।
बेशक बेशक,
एक विश्वास जिससे सुन्नत अदा की जाती है, उसमें ये असर, ये नमाज जिससे सुन्नत नहीं अदा की जाती है, अल्लाह का फर्ज अदा किया। अगर ये सच्चाई के साथ मस्जिदों में आकर छुप करके और ये काम किया जाए, तो खुदा की कसम हमारे एक सजदे में बड़ी बड़ी तवाना क्या है। मैं दुआ करता हूँ, या रब तेरे मुस्लिम को वो जिंदा कराना, या रब तेरे मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो रूह को गर्मा दे और कल्ब को गर्मा। ये जज्बा ईमानी पैदा करो, और नमाज जिसका सबसे बड़ा जरिया है, नमाज घर में भी पढ़ो और तुम को भी पढ़ने की काफी करो। मेरा दावा है, चंद वर्षों में मुसलमानों की जिंदगियों में इंकलाब आ जाएगा और जुल्म की तलवारें हट जाएंगी, जादू जाहिर तुम्हारे कदमों पर शीश नवाजी करेंगे। मौला मेरी कौम के बूढ़ों को, जवानों को, मर्दों और औरतों को इस नमाज की तरह मुतवज्जा फरमाकर इनकी बिगड़ी हुई हालत को सुधार, बुजुर्गों से तालियों करके गलत सोचों से बचे। ये मेरे दुनिया का आग्रह है, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। हमारी जिंदगी में इस्लाम के साथ जिम्मेदारी وما علينا بالدنيا